दिन भर 6 अक्टूबर दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। बिहार के बारिश और बाढ़ प्रभावित जिलों पर अब बीमारी का साया, तीखी हुई एनडीए नेताओं की जुबानी जंग।
मंत्री कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनता है, तो इसके जिम्मेवारी कौन लेगा? मंत्री की बात अगर प्रशासक नहीं सुनता है, तो कितना मनभरू है वो।
खास रिपोर्ट, खास दर्जा खत्म होने के बाद भारत प्रशासित कश्मीर में कितनी बदली आम लोगों की जिंदगी।
हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मोदी जी को भी और इमरान खान साहब को भी कि इस खूने रेजी से हमें थोड़ा राहत दें।
और दक्षिण अफ्रीका पर भारत की धमाकेदार जीत, रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच।
Winning the test match was more important than anything else. We all know how important are those 40.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तन्वी से। पटना में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद अब पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है। यहां पिछले 8 दिनों से सड़कों पर बारिश का पानी जमा है और बीमारियों का कारण बन रहा है। यहां अब तक 600 से ज्यादा डेंगू के मामले पाए जा चुके हैं, साथ ही चिकनगुनिया, डायरिया और दिमागी बुखार के मामले भी सामने आ रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने अमेज़न वर्षा वन में लगी भीषण आग की निंदा करते हुए इसकी तुलना एक तरह के उपनिवेशवाद के लालच से की है। पोप फ्रांसिस 3 हफ्तों तक चलने वाली पादरियों की एक सभा की शुरुआत करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन वर्षा वनों में लगी आग लोगों के स्वार्थ का नतीजा है। उन्होंने अमेज़न वर्षा वन में लगी आग की ईश्वर की आग से तुलना करते हुए उसे इंसान की लगाई आग बताया। जैसा कि हम कहानियों में पढ़ते आए हैं, ईश्वर की अग्नि सब कुछ रोशन कर देती है लेकिन नष्ट नहीं करती। ये प्रभु के प्यार की अग्नि है जिससे हम सब उज्ज्वलित होते हैं, लेकिन जब इसमें स्वार्थ जुड़ जाता है तो ये प्रभु की अग्नि ना होकर इंसानों की आग बन जाती है जो केवल नष्ट करती है। ईश्वर हमें इस नए तरह के उपनिवेशवाद से बचाए। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। कोसोवो के प्रधानमंत्री रामुश हर्दिनाज के इस्तीफे के बाद वहां आम चुनाव के लिए मतदान जारी है। प्रधानमंत्री हर्दिनाज को हेग में एक युद्ध अपराध अदालत में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कोसोवो लिबरेशन आर्मी के पूर्व नेता हर्दिनाज इन चुनावों में फिर से खड़े हो रहे हैं। पिछले शासन को लेकर कोसोवो की एक पत्रकार यता जारा कहती हैं कि सर्बिया से आजादी पाने के बाद हर्दिनाज के शासन में कोसोवो में खुशहाली नहीं आई है।
They are voting against an inept governance and corruption.
कोसोवो की जनता आज अयोग्य शासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना वोट देगी। सभी का मानना है कि आज कोसोवो रहने लायक नहीं रह गया है। यहाँ के लोगों को काम के लिए कोसोवो से बाहर जाना पड़ता है। ये थे कोसोवो की पत्रकार यता जारा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे नकाबपोश लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आज लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं देश में बने नए इमरजेंसी कानून के तहत पहली बार गिरफ्तारी भी की गई। ये नया कानून नकाब पहनने पर रोक लगाता है जिसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अमरीकी अधिकारियों के साथ परमाणु निरस्तीकरण को लेकर हो रही बातचीत के भविष्य पर संदेह जताया है। अमरीका ने आने वाले 2 हफ्तों में एक बैठक का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसे अमरीका से तब तक कोई संतोषजनक प्रस्ताव लाने की उम्मीद नहीं थी। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अमरीका को अपनी विरोधी नीतियों को खत्म करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए। अमरीका के कैंसस शहर के एक बार में रविवार सुबह हुई गोलीबारी में 4 लोग मारे गए हैं जबकि 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये हमला सिर्फ एक बंदूकधारी ने किया है। नेपाल की संसद के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण बहादुर महारा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर स्टाफ की एक महिला सदस्य ने रेप का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ काठमांडू कोर्ट ने वारंट जारी किया था। कृष्ण बहादुर महारा ने इन आरोपों से इनकार किया है। नेपाल के संसदीय सचिवालय में काम करने वाली महिला सदस्य का आरोप है कि कृष्ण बहादुर महारा ने अपने घर में नशे की हालत में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। दिन भर में सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में बारिश थम गई है, लेकिन लोगों को जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से अब तक राहत नहीं मिल सकी है। राजधानी पटना की स्थिति भी बेहद खराब है। इस बीच डेंगू और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मरीजों की हर दिन बढ़ती संख्या हालात की गंभीरता बयां कर रही है। मुश्किल स्थिति के बीच बिहार के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में भी तनाव दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज ट्विटर पर बाढ़ की स्थिति के लिए एनडीए की ओर से माफी मांगी। इसके बाद एक चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया।
भाई भाई, ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को। अगर गंगा के बाढ़ से डूबा होता तो बातें समझ में, कहीं न कहीं कुव्यवस्था इसके आड़ में।
गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने उन पर पलटवार किया और केंद्रीय नेतृत्व से इस मामले में दखल देने की मांग की। वहीं दूसरे नेता मौजूदा स्थिति के लिए अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या है जमीन पर स्थिति, बता रहे हैं पटना से नीरज सहाय।
पटना पिछले 8 दिनों से विकट जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और पाटलिपुत्र कॉलोनी में स्थिति आज भी नारकीय बनी हुई है। जल जमाव की वजह से राजधानी में अब तक 600 से अधिक डेंगू के मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया, दिमागी बुखार और डायरिया के भी कई मरीज पटना के पीएमसीएच में भर्ती हैं। वहीं निरंतर बिजली की अनुपलब्धता भी शहर के लोगों की जिंदगी असहज बना रही है। पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे भी इस बार के जल जमाव से बुरी तरह प्रभावित रहे। उन्होंने महज 3 दिनों की बारिश से पटना के भीषण जल जमाव के कारण बताए। उनके अनुसार,
तो यहाँ सरकार ने कोई ऐसा बहुत बड़ा अर्बन डेवलपमेंट का काम सरकार ने नहीं किया। पटना टाउन का सारा डेवलपमेंट प्राइवेट, और प्राइवेट लोगों ने जहाँ पर जो जमीन उनको मिली तो उसको उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने मकान बना लिया। तो अर्बन डेवलपमेंट ये सब टाक भाई कि स्मार्ट सिटी है या बहुत तो डेवलप सिटी है, ये सब हवा हवाई जैसी ये बातें हैं। यहाँ पर कोई इस तरह का डेवलप्ड काम नहीं किया गया है। यहाँ ऐसा कोई प्लान डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है।
उधर जल जमाव की भीषण समस्या के बीच राज्य में एनडीए घटक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि पिछले महीने तब पड़ी थी जब भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार छोड़ दिल्ली जाने की सलाह दे डाली थी। अब राजधानी में भीषण जल जमाव के दौरान जदयू नेता हमलावर हो गए हैं। हालांकि भाजपा नेतृत्व जल जमाव को लेकर वे राज्य की अफसरशाही पर ही सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। वहीं दबी जुबान में पार्टी कार्यालय में यह चर्चा तेज है कि वरीय अधिकारियों पर सीधा सीधा नियंत्रण ऊपर का ही रहता है। इस मुद्दे पर भाजपा के मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिंह सहयोगी दल के नेताओं का नाम लेने से परहेज करते हैं और कहते हैं कि
ये नौकरी करते हैं, सरकार का वेतन उठाते हैं, आखिर किसके लिए उनको इतना सुविधा दिया जाता है? मंत्री से ज्यादा सुविधा में रहते हैं ये लोग, तो इससे ज्यादा सुविधा में जब रहते हैं तो जिम्मेवारी कौन लेगा? मंत्री कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनता है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मंत्री की बात अगर प्रशासक नहीं सुनता है तो कितना मनभरू है वो। आज पटना को डूबने के लिए छोड़ के और विदेश में घूम रहा है वो यहाँ का प्रशासक। एक प्रशासक जो है पहले कमिश्नर था, वो रिजाइन करके भाग गया। वो सब जानता था लोग कि पटना डूबने वाली है, डूबने के पहले नाव को छोड़ के भाग गया।
जाहिर है पटना के जिन 3 इलाकों में जल जमाव हुए उसके विधायक और नगर निगम की महापौर भी भाजपा की ही हैं। सत्तारूढ़ दलों में आपसी रस्साकशी के बीच पटना की जनता अब भी जल जमाव में फंसी है। हालांकि राज्य का स्वास्थ्य महकमा यह दावा कर रहा है कि वह किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
और अब बात महाराष्ट्र की, जहां राजधानी मुंबई की आर ए कॉलोनी में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहां आज क्या हुआ, ये जानने के लिए मैंने बात की मुंबई में मौजूद अपने साथी मयूरेश कोनूर से।
आज दूसरे दिन भी यहाँ पे पेड़ों की कटाई चल रही है। इस इलाके में किसी को भी जाने से आज भी मना है। 3 रास्ते जो है वो इस एरिया में अंदर जाते हैं। तीनों जगह पे पुलिस बैरिकेडिंग है, पुलिस बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो हमें जानकारी है, अभी भी पेड़ों की कटाई शुरू है। कल जब ये घटना घटी थी और परसों रात सब लोगों को अरेस्ट किया गया था, करीब 29 लोगों को अरेस्ट किया गया था और 50 से भी ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था। जिनको अरेस्ट किया गया था आज कुछ देर पहले उन्हें बोरिवली कोर्ट में उन्होंने जमानत मिल गई है और उनको रिहा कर दिया गया है। जिनको पकड़ा गया था पूरे दिन भर भाई जो भी जाने के अंदर कोशिश कर रहे थे उनको भी छोड़ा गया है। हालांकि पॉलिटिकल इसकी जो कंट्रोवर्सी है वो भी चल रही है, शिवसेना अभी भी इसका विरोध कर रही है, आदित्य ठाकरे बार बार बयान भी दे रहे हैं। आज प्रकाश अंबेडकर जो है वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता, उन्होंने भी आरए में अंदर जाने की कोशिश की लेकिन उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में उनको छोड़ भी दिया। कल कुछ लोग बॉम्बे हाईकोर्ट में वापस गए थे शाम में बताने के लिए कि ये काम को रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने कोई भी हियरिंग करने से मनाई कर दी थी। उस वक्त MMRCL यानी जो मेट्रो का पूरा काम देख रहे हैं उन्होंने ये बताया कि करीब 1500 पेड़ों की कटौती हो चुकी है और अभी भी काम अंदर जारी है।
क्या कुछ लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए?
जी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को आज छुट्टी है, जो भी एक्टिविस्ट हाईकोर्ट में गए थे वो अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो है उन्होंने आज दिल्ली में चीफ जस्टिस को जाकर इसमें सुनवाई करने की जो है वो पिटीशन दाखिल करने की कोशिश की है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से आगे कुछ आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोग आज दोपहर में दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला ले जाने के लिए प्रयास उन्होंने आज किया है।
और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आरए कॉलोनी में जो आदिवासी रहते हैं, पहले से रहते आ रहे हैं, उनके बारे में कोई अपडेट आपके पास है?
जब तक ये आंदोलन की बात है, परसों रात में जो हुआ तो वहां पर रहने वाले जो भी एक्टिविस्ट कुछ हैं वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन आदिवासी जो हैं उनको जो सालों से वहां पे रह रहे हैं, वहां पे पुराने आदिवासी पाड़े भी हैं जिनको बस्तिया कहते हैं, अभी तक उनको लेकर कोई जानकारी नहीं कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले जब पूरे मामले में जब महाराष्ट्र में चर्चा हो रही थी हम उनसे मिले थे और उन्होंने उनका भी विरोध था कि सालों से वो इस जंगल में रह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी भी तरह का उनका जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो।
मुंबई से जानकारी दे रहे थे BBC संवाददाता मयूरेश कोनूर।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र राणा ने कहा कि राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्य धारा के नेताओं की रिहाई जरूरी है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद से ही फारूक अब्दुल्ला नज़रबंद है और उमर अब्दुल्ला भी बंद है। तब से ही घाटी में इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा भी बंद है। इन पाबंदियों को 50 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। आम लोगों के लिए ये दिन कैसे रहे हैं, BBC संवाददाता विनीत खरे ने यही समझने के लिए श्रीनगर के अलावा उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में कई दूर दराज के इलाकों और गांवों का दौरा किया। सुनिए उनकी एक खास रिपोर्ट।
कोई बात नहीं, इधर आओ ना। तुम लोग यहीं पढ़ते हो? तो तुम लोग पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो?
सेवेंथ।
तभी तो बंद कब से है स्कूल?
हड़ताल हुआ है।
तो दिन भर क्या करते हो फिर?
खेलते
हैं। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां के एक गांव में एक ठंड दोपहर में छायादार पेड़ों के नीचे एक सरकारी मिडिल स्कूल के बाहर मुझे कुछ बच्चे खेलते मिले। मैं 7वीं कक्षा के एक बच्चे से बात कर रहा था कि तभी पास ही गुजर रहे एक कार वाले ने गाड़ी रोकी।
अब एजुकेशन, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या पता है हमें क्या हो गया? ये खुश होता है हमें छुट्टी है आज, इनको कुछ नहीं पता है। इनको पता नहीं हमारा मुस्तकबिल क्या हो गया, जो एजुकेशन ये खत्म हो गया।
सरकार ने कई बार प्रेस वार्ताओं में प्राइमरी और हाई स्कूलों के खोलने की घोषणा की, लेकिन सुरक्षा को लेकर चिंता के कारण बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। माँ बाप के सामने चुनौती है कि बच्चों को घरों में व्यस्त कैसे रखा जाए ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो। बोर्ड की परीक्षाएं, गेट, IIT आदि की परीक्षाएं नजदीक हैं और ट्यूशन सेंटर्स भी बंद हैं। ऐसे ही स्कूल में मैं पहुंचा जहां स्कूल तो बंद था लेकिन माँ बाप और रिश्तेदार बच्चों के साथ आ जा रहे थे, किसी के हाथ में चॉकलेट तो किसी के हाथ में आइसक्रीम। स्कूल के रिसेप्शन से गुजरते हुए मैं एक कमरे में पहुंचा जहां लगी दो बड़ी मल्टीफंक्शनल मशीनें और दो छोटी जेरोक्स मशीनों से लगातार कागज छपने की आवाज आ रही थी। इन मशीनों पर बच्चों के लिए हर विषय के असाइनमेंट की कॉपियों के सेट तैयार हो रहे थे ताकि वो घर में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। बड़ी मशीन पर हर मिनट 125 कॉपियां छप रही थीं, जबकि जेरोक्स मशीन पर 50 से 60 कॉपी प्रति मिनट। मशीनों के ऊपर कश्मीरी, उर्दू, हिंदी के कई असाइनमेंट सेट रखे थे। हर सेट पर बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस थे ताकि वो हफ्ते या दो हफ्ते बाद असाइनमेंट को पूरा करके स्कूल में टीचर को दिखा सकें। स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों के लिए वीडियो लेसन रिकॉर्ड किए थे जिन्हें वो घर पर देख सकें। एक अधिकारी के मुताबिक वो अभी तक एक ट्रक से ज़्यादा पन्नों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन घर और स्कूल की पढ़ाई की खाई को पाटना आसान नहीं, खासकर अगर बच्चा किसी बड़ी कक्षा में पढ़ता हो जहाँ पढ़ाई आसान नहीं। प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म भरने वाले छात्रों की समस्याएं भी कम नहीं। श्रीनगर के केंद्र में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के एक बड़े हॉल में फॉर्म भरने के लिए 5 कंप्यूटर्स रखे थे।
आप स्टूडेंट हैं क्या? ये गेट एग्जाम्स के लिए ना?
पूरे शहर में छात्रों के लिए इंटरनेट से जुड़े यही 5 कंप्यूटर हैं। साथ ही मदद के लिए एक व्यक्ति जिसके पास OTP और ऑनलाइन पेमेंट के लिए मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड रखा था। हॉल के भीतर एक सोफे पर बैठी 23 साल की सईदा कहती हैं,
ये मेरा कजन है, वो लोग दिन भर मेरे फोन में गेम है, वो मुझे बोल रहा है गेम लाओ, कोई मैं गेम लाऊं कहाँ से उसके लिए? इस टाइम ना प्ले स्टोर चल रहा है मुझे, ना मुझे कुछ चल रहा है, मैं कहाँ से लाऊं उसके लिए कोई चीज़? आप कैरम बोर्ड भी खेलते खेलते हम लोग पागल हो गए। अब दिल ऑलवेज आज की बाहर जाएंगे, मुझे उसके साथ खेलना है, इसके साथ खेलना है, कहाँ पे खेलेगा वो? हम लोगों को पता ही नहीं है हम लोग बच्चों को कैसे संभालेंगे। उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। स्कूलिंग स्कूल से इंसान स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है, स्कूल से इंसान का दिमाग खुल जाता है। वो बेचारा दिन भर घर पे बैठा, पापा अब हमें कब स्कूल जाना है, पापा कभी खुलेगा, पापा अब हमें क्या पाकिस्तान बनेगा कि कश्मीर बनेगा, मतलब हिंदुस्तान रहेगा, अब मैं हिंदुस्तान वालों ने लिया, मतलब ऐसे ऐसे सवाल बच्चे पूछते हैं।
अदालतों में भी काम पर असर पड़ा है। श्रीनगर में बार एसोसिएशन के प्रमुख मियां अब्दुल कयूम और पूर्व प्रमुख नज़ीर अहमद रोंगा की गिरफ्तारी, उन पर PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने से करीब 1,500 वकीलों ने काम ठप कर रखा है। ट्रांसपोर्ट नहीं होने से लोगों के अदालतों तक पहुंचने में भी दिक्कतें हैं। एक वकील के मुताबिक लोग मामलों में खुद जज के सामने पेश होते हैं, इसलिए न कोई जिरह होती है और उन्हें अगली तारीख दे दी जाती है। जिन मामलों में PSA या पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है उनमें पहले याचिका दाखिल करनी होती है, जिसके बाद सरकार को नोटिस दिया जाता है और फिर जवाब के बाद अदालत में बहस होती है। लेकिन PSA मामलों को देख रहे एक वकील के मुताबिक ऐसी दर्जनों याचिकाओं पर अभी तक नोटिस नहीं भेजी गई है, यानी याचिकाकर्ताओं के लिए आगे की राह आसान नहीं। मानवाधिकार कार्यकर्ता कश्मीर में PSA के कथित दुरुपयोग पर आवाज़ उठाते रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत पुलिस किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल या आधिकारिक कारण के जेल में रख सकती है और उसे अगले 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की भी ज़रूरत नहीं होती। हाई कोर्ट में ही बारामूला से आए अल्ताफ हुसैन लोन बैठे थे, जिनके 10 साल से सरपंच और नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ता भाई शब्बीर अहमद लोन को भी पुलिस उनके शब्दों में उनके सरकारी क्वार्टर से ले गई, और अगले दिन जब वो पुलिस के पास गए तो उन्हें कहा गया कि उन पर PSA लगा हुआ है।
MC का वर्कर है, क्वार्टर में था और अंडर सिक्योरिटी था, PSA किस बात का? इसीलिए हम यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ पे वकील काम नहीं कर रहे हैं।
उनके उनके घर में कौन कौन है?
सिर्फ उसकी बीवी और बच्चे दो, एक 5 साल के एक 2 साल के, बस। गुस्सा इस बात का हमने आज तक इनका साथ दिया है हिंदुस्तान का, तो हमें गले पड़ गई। जो लोग बैकहट लोग थे वो खुश हुए इस फैसले से, वो बंद हुआ, अच्छा किया, ये हिंदुस्तान के साथ था, कौन हमारे साथ बात कर रहा है? वो लोग बात हमारे साथ नहीं कर रहे, बोलते हैं अच्छा हुआ आप लोगों के साथ, आप इसी के लायक हैं।
पकड़े गए कई नेताओं को डल झील से सटे सेंटोर होटल में रखा गया है। यहाँ अंदर जाने के लिए 4 चरणों की सुरक्षा है। जम्मू और कश्मीर के एक पुलिसकर्मी ने बताया कि अंदर 36 नेता बंद हैं, जो उनके शब्दों में जब मन चाहे अपने पसंद का खाना चिकन खा सकते हैं और बाहर घूम सकते हैं।
तो आप लोग जैसे अंदर गए तो उनको किस तरह के कमरे में रखा हुआ है?
वो कमरे नहीं देखा, उनको नीचे लाता है, पहले उनको बुलाया जाता है नीचे, फिर वो करते हैं अपने वर्कर्स रिलेटिव्स के साथ करते हैं।
सेम टू हम जेल की बात करें कि जेल ही है, बाहर उनको एक लॉन्ज में लिया जाता है, कमरे में की इजाज़त नहीं है, पहले लिखवाया जाता है इधर कि कैसे हम अंदर जाएं, क्या लगते हैं आप, उनके रिलेटिव है तो तभी आना जाता है, कोई आम लोग मिलने नहीं हो सकता है, उनके साथ मिलने नहीं देते हैं उनको।
सरकार का कहना है कि इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद करने का मकसद लोगों की जान बचाना है, क्योंकि इससे चरमपंथियों के हैंडलर उनके संपर्क में नहीं। उधर दक्षिणी कश्मीर के एक जानकार ने कहा कि मोबाइल सेवा बंद करने से चरमपंथी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें ट्रैक करना, उनके बारे में पुलिस को खुफिया जानकारी देना आसान नहीं रहा। इस जानकार के मुताबिक नौकरी और काम पर जाने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है ताकि ये दिखे कि हड़ताल मुकम्मल है। कश्मीर में कई लोग सरकारी फैसले का विरोध और हड़ताल का समर्थन करते हैं। कुछ लोगों ने इसलिए भी दुकानें बंद कर रखी हैं कि अकेले दुकान खोलने पर वो समाज में अलग थलग पड़ जाएंगे। चरमपंथियों और हड़ताल समर्थकों की ओर से हमलों का डर भी बंद का कारण है। कुछ दिन पहले ही एक दुकानदार की हत्या से भी लोग सहमे हैं। बीबीसी के श्रीनगर में हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर के मुताबिक चरमपंथियों की ओर से छापे गए पोस्टरों में लोगों से कहा गया है कि वो ट्रांसपोर्ट, दुकानें, पेट्रोल पंप काम बंद रखें। दक्षिणी कश्मीर में जलाई गई एक दुकान के पास हम पहुंचे तो वहां रेनोवेशन का काम चल रहा था।
हमसाए आए, रिलेटिव्स आए, जो इस मेरी दुकान के नेबर्स थे वो आए कि आपका दुकान अंदर से जल रहा है। मैंने दुकान बंद कर रखा था, फिर सब कुछ जल गया उसमें।
तो आप उससे पहले दुकान अपनी खोल के रख रहे थे?
हाँ, पता नहीं कानून कहाँ से आ गया, कहा कि आप दुकान क्यों खुले रखते हैं।
तो जब आप आए तो आपने क्या देखा यहाँ पे?
यहाँ बस बाहर आग ही आग। जो मेरा ये शटर था ना, ये सुर्ख रंग का था, इसमें हाथ भी लगाने नहीं सके।
और उसके बाद से बाकी के लोगों ने यहाँ पे दुकानें अपनी बंद करनी शुरू कर दी,
कंप्लीट बंद करनी शुरू कर दी।
यहाँ डर न सिर्फ चरमपंथियों का है बल्कि सुरक्षा बलों का भी कि कहीं उन्हें गिरफ्तार कर दूर आगरा या लखनऊ न भेज दिया जाए। दोनों ओर घने पेड़ के बीच बनी कच्ची सड़कों से होते हुए हम एक और गाँव में पहुंचे जहाँ एक और दुकान को दो बार जलाया गया था। एक मेडिकल की दुकान के अलावा सभी के शटर बंद थे, जिनके बाहर लड़के या तो बैठे बात कर रहे थे या वीडियो गेम खेल रहे थे। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हम गांव से तुरंत निकल जाएं क्योंकि वहां चरमपंथी मौजूद हैं। एलओसी से सटा उड़ी उन इलाकों में से है जहां सबसे ज्यादा वोट पड़ते रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले के बाद यहाँ भी बाजार बंद थे। पहाड़ी रास्ते से ऊंचाई पर हम मोथल गांव पहुंचे जहां से दूर पहाड़ों पर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गांव नजर आते हैं। गांव वालों के मुताबिक 5 अगस्त से एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच शेलिंग जारी है।
उधर से मोदी तंग कर रहा है, उधर से इमरान खान तंग कर रहा है, हम लोग कहां जाएंगे?
ये ताजा गोलाबारी से रात को शुरू हुई, अब मुझे टाइम याद नहीं है।
मतलब ये पिछले जैसे 5 अगस्त से जब से ये 370 हटाया गया है,
तब से तो सारे टेंशन ही है। अब ये पता नहीं लगता किस वक्त फायरिंग होगी, ये तो हमें पता, हम सिविल लोग।
बीच दोपहर थी, धूप के साथ साथ रिमझिम बारिश भी हो रही थी। पहाड़ पर बनाए गए सकरे रास्तों से पत्थरों पर खुद को संभालते चढ़ते हम लतीफा बेगम के घर पहुंचे। पिछली रात जब वो अपने 8 साल के बेटे बिलाल के साथ पड़ोस की हफीजा के घर में थी, तब टीन की चादर को तोड़ते हुए मोर्टार का एक छोटा सा टुकड़ा बिलाल और उन पर आ गिरा।
तो जब चोट लगी तो आपने क्या किया फिर?
फिर उड़ी गई थी।
रात में उड़ी गई?
हाँ, रात में उड़ी गई थी।
तो दुकान तो बंद है, फिर कहाँ पे इलाज करवाया?
अस्पताल में, उड़ी में। हाँ,
खुला था उस वक्त रात?
हाँ, अस्पताल खुला था। इसको एक्सरे कराई, आपको भी, इसको भी।
सर, आज शाम को जिस वक्त लगभग 7 बजे के करीब शिलिंग हुई पाकिस्तान द्वारा, इसमें सर हमारा गांव जो है ये पूरी जद में आ गया। इसलिए सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मोदी जी को भी और इमरान खान साहब को भी कि इस खूने रेजी से हमें थोड़ा राहत दें या फैर बंदी करें। सर हम जो बॉर्डर वाले लोग हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है, ना हमारे पास कोई घर है ऐसा कि जिसमें हम घुसे, ना यहाँ पे बैंकर हैं। सब दावे करते हैं कि यहाँ पे बैंकर और ये दिया गया है, हम गरीब लोगों के पास कुछ नहीं, ये सब दावे इनके छलाए दाए हैं। सर रात को सोए नहीं है हम, हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो रोते हैं तो हम कैसे सोएं।
लगातार गोलीबारी के कारण गाँव में रहने वाले लोग अपने बच्चों माँ बाप को सुरक्षित इलाकों में ले जा रहे हैं। विनीत खरे, बीबीसी श्रीनगर।
हम बता दें कि सुरक्षा कारणों से इस रिपोर्ट में कुछ नाम और जगह बदल दिए गए थे। इस रिपोर्ट पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने आज भी मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया। पूरी रिपोर्ट कमलेश मठेनी से।
हांगकांग के कई हिस्सों में आज जोरदार बारिश हो रही थी। शहर के प्रशासन ने शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद सावधानी बरतते हुए करीब आधे मेट्रो स्टेशनों को बंद करा दिया था, लेकिन इसके बाद भी हजारों लोग मास्क लगाकर सड़कों पर उतरे और प्रशासन की ओर से लगाई गई पाबंदियों का विरोध किया। हांगकांग सरकार प्रदर्शनकारियों के मास्क पहनने पर रोक लगा चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पाबंदी से बेअसर दिखे। टकराव की आशंका को लेकर बाजार में ज्यादातर दुकानें बंद थीं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, लेकिन ये झड़पें शुक्रवार को हुई तकरार की तरह गंभीर नहीं थीं। तब प्रदर्शनकारियों ने चीन के बैंकों, दुकानों और मेट्रो स्टेशनों को निशाना बनाया था। उनका पुलिस के साथ भी टकराव हुआ था। सरकार की ओर से मास्क पर लगाई गई पाबंदी को विपक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। विपक्ष के नेताओं ने दलील दी थी कि हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव की ओर से मास्क पर लगाई गई पाबंदी असंवैधानिक है। ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्र तरीके से जमा होने के अधिकार का हनन करता है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। हांगकांग में बीते कई महीनों से लोकतंत्र समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ये एक विवादित बिल के विरोध के साथ शुरू हुआ था। प्रशासन ने विधेयक को वापस ले लिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हिंसक होती जा रही हैं और इसे लेकर हांगकांग में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले संस्थान परेशान हैं। हांगकांग के अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट तारा जोसेफ ने कहा कि हांगकांग में व्यापारिक गतिविधि चलाना मुश्किल होता जा रहा है।
It's fair to say these are very challenging times in Hong Kong. We've seen it before with things like...
ये कहना सही होगा कि हांगकांग के लिए ये समय बेहद चुनौती भरा है। हमने सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर 1990 के वित्तीय संकट के समय भी मुश्किल दौर देखा है, लेकिन इस बार ये साफ नहीं है कि मुश्किल कब खत्म होगी, ये कैसे खत्म होगी। तमाम तरह की अनिश्चितता बनी हुई है। सुपरमार्केट और मेट्रो सिस्टम का बंद रहना बेहद चिंताजनक है। ये थे तारा जोसेफ के शब्द। हांगकांग पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था। साल 1997 में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया था। चीन ने एक देश दो प्रणाली के तहत इसकी स्वायत्तता बरकरार रखने का समझौता किया था। ये समझौता साल 2047 तक के लिए है। इसके बाद हांगकांग के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। और अब खेल की खबरें। स्टूडियो में आ चुके हैं आदेश कुमार गुप्त। जी आदेश जी।
जी वासल, जैसा कि कल आपकी भविष्यवाणी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में नहीं बल्कि हमारे अपने
ऑफिस में बातचीत में थी। जी
तो आपने कहा था कि भारत कल इस मुकाबले को जीत लेगा, तो बिल्कुल ऐसे हुआ। हालांकि जिस तरह का विकेट था उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच ड्रॉ हो सकता है,
लेकिन बहुत ही सेशन और 98 ओवर बहुत थे।
जी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बैट्समैन ने उस तरह से विकेट पर टिकने का दमखम नहीं दिखाया जिस तरह से बल्लेबाजों ने दिखाया। जैसे कि सेनरुअन मुथुस्वामी, उन्होंने नाबाद 49 रन बनाए। डेन पीट ने 56 रन बनाए। कैगिसो रबाडा ने 18 रन बनाए। और तारीफ करनी होगी मोहम्मद शमी की जिन्होंने टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से ढा दिया।
उनकी तारीफ विराट कोहली ने भी बहुत की है। एसजी बॉल को जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से दूसरी इनिंग में विकेट ले रहे हैं।
जी 35 रन देकर उन्होंने 5 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा ने 27 रन देकर 4 विकेट झटके। लेकिन रोहित शर्मा की तारीफ अगर ना करें तो काम नहीं चलेगा।
मैन ऑफ द मैच तो वही है, ये मैच भी उन्होंने ही सेट किया।
और जिस तरह से भारत को कुल मिला के 40 आईसीसी टेस्ट पॉइंट मिले हैं, रोहित शर्मा ने जो कि मैन ऑफ द मैच भी हैं, दोनों पारियों में शतक जमाया, उन्होंने कहा कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण था।
I just wanted to enjoy the moment. At the same time, really thankful to the coach, captain, and the selector for giving me that opportunity, for considering for that particular slot. I've never done that before. But yeah, eventually, winning the test match was more important than anything else. We all know how important are those 40 points in every test match that you play. So the focus was on winning the test match, and I think we did pretty much everything.
और अब देखना है कि जो दूसरा test match गुरुवार से शुरू होगा, उसमें दक्षिण अफ्रीका किस तरह की वापसी करता है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा पर सबकी नजरें थी और क्या कमाल का खेल उन्होंने दिखाया कि तमाम
गेंदबाज दोनों पारियों में रोहित बेमिसाल रहे। और स्पिनर भी आपको याद रखना पड़ेगा अश्विन, दूसरे पारी में रविंद्र जडेजा। बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त इस अपडेट के लिए। और अब चलते चलते मुख्य समाचार तन्वी से।
बीबीसी समाचार। पटना में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद अब पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है। यहां पिछले 8 दिनों से सड़कों पर बारिश का पानी जमा है और बीमारियों का कारण बन रहा है। पोप फ्रांसिस ने अमेज़न वर्षावन में लगी भीषण आग की निंदा करते हुए इसकी तुलना उपनिवेशवाद के लालच से की है। कोसोवो के प्रधानमंत्री रामोश हर्दिनाज के इस्तीफे के बाद वहां आम चुनाव के लिए मतदान जारी है। हांगकांग पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे नकाबपोश लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर आज लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। उत्तर कोरिया ने अमरीकी अधिकारियों के साथ परमाणु निरस्तीकरण को लेकर हो रही बातचीत के भविष्य पर संदेह जताया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी अजीत सारथी के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।